ओम नमस्ते जी। 225वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सातवें समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय चल रहा है। बहुत ही रोचक चर्चा आपके समक्ष गत श्रव्य कणिका में आ रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ईश्वर के स्वरूप के विषय में प्रश्नोत्तर माध्यम से बता रहे हैं। पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न किया जा रहा है, परमेश्वर अपना अंत जानता है वा नहीं? सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषि दयानंद उत्तर दे रहे हैं, परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाए, अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार का जानने का नाम ज्ञान है। परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान, और उससे विरुद्ध अज्ञान, अर्थात अनंत को शांत और शांत को अनंत जानना भ्रम कहता है। यथार्थ दर्शनम ज्ञानम इति, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहता है। उल्टा, इससे उल्टा अज्ञान कहता है। इसलिए क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, योग दर्शन प्रथम पाद का 24वां सूत्र। जो अविद्यादि क्लेश, कुशल अकुशल, इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। अब इस विषय में परमात्मा जो अर्थात भाष्य करते हुए आचार्य शंकर को अद्वैतवाद की याद आ गई और उन्होंने लिख डाला कि द्विरूपम ब्रह्मावगम्यते, नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम तद विपरीतम च सर्वोपाधि विवर्जितम। अर्थात ब्रह्म के दो रूप हैं, एक नाम रूप विकार भेद की उपाधि वाला और दूसरा सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त। एक पर ब्रह्म है जो सर्वथा निर्गुण है, सत्ता मात्र है। दूसरा अपर ब्रह्म है जो माया की उपाधि के कारण बन जाता है। यह दूसरी प्रकार का ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। पर ब्रह्म की अपेक्षा यह घटिया स्तर का ब्रह्म है। शंकर मत के अनुसार पर ब्रह्म सर्वथा निष्क्रिय है, इसलिए वह न तो सृष्टि को उत्पन्न करता, न धारण करता, न उसका विलय करता है। परंतु शंकर की यह कल्पना न तो शास्त्र सम्मत है और न ही तर्क संगत। मोक्ष लाभ के लिए जिस ब्रह्म को जानने की इच्छा की गई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका परिचय सूत्रकार यह कहकर देते हैं कि ब्रह्म वह है जिससे सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। जन्माद्यस्य यतः सूत्र है, और जो समस्त ज्ञान का आदि स्रोत है शास्त्र योनित्वात्, ऐसा ईश्वर निष्क्रिय भला कैसे हो सकता है? ब्रह्म के इस प्रकार दो रूपों का संकेत तक वेदादि शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। यह मात्र शंकर के मस्तिष्क की उपज है। कोई भी चेतन पदार्थ निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। इसलिए ईश्वर के चेतन होने से भी उसके निष्क्रिय होने की कल्पना नहीं की जा सकती। सगुण निर्गुण की जहां तक बात है, सगुण का अर्थ प्राय साकार और निर्गुण का अर्थ प्राय निराकार लिया जाता है लोक में। ऐसा मानना सर्वथा अशास्त्रीय है। यह नितांत भ्रांत धारणा पर आधारित है। निराकार तत्व भी सगुण हो सकता है, जैसे निराकार आकाश का गुण शब्द है। ब्रह्मवादी ब्रह्म को निर्गुण कहते हैं, और जब तक वह मायोपाधि से ईश्वर नहीं बन जाता तब तक वे ब्रह्म में किसी गुण का अध्यारोपण नहीं करते। इसी भ्रांति के कारण सगुण और निर्गुण के अर्थ को ठीक प्रकार से न समझना है। संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें केवल सगुणता या केवल निर्गुणता हो। अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित और विरोधी गुणों से रहित होने से सभी पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं। इस प्रकार एक ही पदार्थ में एक ही समय में सगुणता और निर्गुणता दोनों रहती हैं। जैसे पृथ्वी गंधादि गुणों के कारण सगुण और इच्छा आदि गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण है, इसी प्रकार चेतन के गुणों से रहित होने से जड़ पदार्थ निर्गुण तथा अपने गुणों से युक्त होने से सगुण है, तथा जड़ के गुणों से युक्त होने से जीव निर्गुण और इच्छा ज्ञान आदि गुणों से युक्त होने से सगुण है, ऐसे ही ईश्वर भी जगत के जड़त्व और जीव की अल्पज्यता राग द्वेष आदि से रहित होने के कारण निर्गुण है। कठोपनिषद में ईश्वर के निर्गुण रूप का निरूपण करते हुए उसे अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम शब्द स्पर्श रूप आदि से रहित बताया है, यही ईश्वर का निर्गुण होना है। इसके विपरीत सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी होने और पवित्रता दयालुता तथा अनंत ज्ञान अनंत बल आदि अनंत क्रिया से युक्त होने से ईश्वर सगुण है। सगुण का अर्थ साकार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सभी सत शास्त्रों में ईश्वर के साकार या मूर्त होने का निषेध है। अब ज्ञान का लक्षण बताते हैं। जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जानने का नाम ज्ञान है। इंद्रियां बाह्य जगत का ज्ञान कराने वाले अधिकरण हैं, परंतु उनकी सीमा गुणों तक है। द्रव्यों की यथार्थता का दर्शन कराने में वे अंशतः सफल होती हैं, किंतु सधी हुई योग बुद्धि पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाती है। साधारण बुद्धि के सामने आने वाला ज्ञान बाहरी आवरण मात्र होता है, जिसे भेद कर योग बुद्धि तत्व के यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर पाती है। साधारण बुद्धि के लिए स्वर्ण पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु मात्र है। सामान्य वैज्ञानिक के लिए वह परमाणुओं का एक संघात है, किंतु एक महान वैज्ञानिक के लिए उसी स्वर्ण के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की निश्चित संख्या वाले हैं, जिनमें परिवर्तन करने पर स्वर्ण के परमाणुओं को किसी अन्य तत्व के परमाणुओं में बदला जा सकता है। जीव की अल्पज्ञता यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि में बाधक है। स्वरूप से अल्पज्ञ होने के कारण जीवात्मा सब कुछ तो जान ही नहीं सकता, परंतु बहुत कुछ जान लेता है। इसलिए परमाणु से परमेश्वर पर्यंत समस्त पदार्थों के यथार्थ ज्ञान साधन में प्रवृत्त रहना उसका परम पुरुषार्थ है। गीता में तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ज्ञानम अर्थात तत्व ज्ञान के विषयों यानी ईश्वर जीव प्रकृति के साक्षात्कार को ज्ञान कहते हैं। अब आते हैं क्लेश कर्म, जो श्लोक जो सूत्र योग दर्शन का है कि क्लेश कर्म विपाक आशय ही यानी क्लेश कर्म विपाक तथा आशयों से अपरामृष्ट असंपृक्त यानी अछूता पुरुष विशेष विशेष चेतन तत्व ईश्वर है। जैसे प्रकृति पद जड़ तत्व का बोधक है, इसी प्रकार पुरुष पद चेतन तत्व को अभिव्यक्त करता है। चेतन रूप में पुरुष पद जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के लिए आ जाएगा। जीवात्मा रूप में एक साधारण चेतन प्रत्येक मानव पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि में पृथक पृथक विद्यमान है। इनके अतिरिक्त एक असाधारण चेतन भी है, उसी का नाम यहाँ पुरुष विशेष है, उसी की संज्ञा ईश्वर है। जीवात्मा चेतन संसार में आकर कर्म करने में स्वतंत्र है और भोगाप वर्गार्थम दृश्यम प्रभु ने सृष्टि की रचना उसी के भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए साधन रूप में की है। इसी के निमित्त जीवात्मा बार बार देह धारण करता है, क्योंकि भोगायतनम शरीरम कर्मफल भोग उसके बिना संभव नहीं। वस्तुतः कर्मैव देहारंभ कारणम देह धारण का कारण ही कर्म है, किंतु ईश्वर अविद्यादि क्लेश कर्म कर्मफल और वासना से रहित है। इसलिए वह प्रकृति उपादान जड़ तत्व से जगत रचना केवल जीवात्म पुरुषों के लिए करता है, अपने लिए नहीं। इसीलिए वह पुरुष विशेष है। यह विशेषता उसके नाम ईश्वर पद से भी अभिव्यक्त होती है। उसका अर्थ है ऐश्वर्य युक्त। वह ऐश्वर्य उसके सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी होने में निहित है। संख्या की दृष्टि से जीवात्म चेतन अनेकों हैं, किंतु ईश्वर पदवाच्य चेतन एक ही है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल बहुत अच्छी चर्चा सामने आ रही है कि सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल मुनि जी अनीश्वरवादी हैं या नहीं, इस बात को कल के श्रव्य कणिका में विवेचन किया जाएगा। ओम।